शारदा जी इस समय कैब में थी और वो वापस सिंगल की तरफ आ रही थी, पर पूरे रास्ते वो अपने और प्रताप की मुलाकात को याद कर रही थी और उसके बाद जो प्रताप ने उसे बताया था उसे सोचते हुए शारदा जी और ज़्यादा परेशान हो गई थीं। शारदा जी ने अपने मन में कहा, कहीं मैं खुद ज़्यादा ही तो नहीं सोच रही हूँ, कहीं ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आस्तिक का मेरे गुजरे हुए कल से कोई रिश्ता हो? और ये जो प्रताप ने कहा है कि बड़े राजा साहब की बेटी तो विदेश में मर गई थी, अगर वो कुमारी ही मर गई थी तो फिर आस्तिक और उसके भाई बहन कौन हैं? क्या मुसीबत है, ये सब इतना उलझा हुआ क्यों है? एक तो अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर मैं एक दूसरे शहर में जाकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर रही थी, पर लगता है मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और अगर आस्तिक का मेरे अतीत से कोई लेना देना है भी तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल चुकी हूँ और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू की है मैंने, पर मैं इस बात को भी तो नहीं झुठला सकती हूँ ना कि आस्तिक मेरे पीछे लगा हुआ है। मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा है और वो कुछ मेरे लिए नफ़रत है। इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ था जब वो मेरे ऑफिस पर अपना कब्ज़ा करने आया था। उससे पहले तो उसके शब्द बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि गुड़ में शहद लपेट के कह रहा हो। मुझसे अरुणिमा का हाथ मांग लिया और शादी होने के बाद ही अपने असली रंग दिखाने लगा। जो भी हो, आखिर अब उसकी शादी अरुणिमा से हो चुकी है, इसीलिए अब मुझे और ज़्यादा सावधान रहना होगा और इसके लिए मुझे ये पता करना होगा कि उसकी मुझसे नफ़रत करने की वजह क्या है। मुझे अरुणिमा से मिलना होगा और वो भी जल्द ही। यहाँ पर शारदा जी अपने ही किसी मंसूबों में लगी हुई थी। दूसरी तरफ अरुणिमा की हालत धीरे धीरे सही हो रही थी। 2 हफ्ते हो चुके थे और अब वो पहले से ज़्यादा बेहतर थी। आस्तिक के कहे अनुसार वो आज सबके लिए सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही थी, लेकिन उसे आज भी सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि उसकी जगह अभी भी वही ज़मीन थी जहाँ पर उसे बैठने के लिए कहा गया था। अरुणिमा सविता आंटी के साथ मिलकर सबके लिए ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। हमेशा की तरह आस्तिक आकर अपनी जगह पर बैठता है और उसके बैठने के बाद ही सब अपनी जगह पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और अरुणिमा वहीं ज़मीन पर अपनी जगह पर बैठी हुई थी और उसके सामने चिकन यानी सोया चाप के टुकड़े रखे हुए थे। आस्तिक सबको देखता है और कहता है, लगता है अब अरुणिमा की तबीयत पहले से ज़्यादा बेहतर है, क्यों पृथ्वी? पृथ्वी, जो कि अपनी तिरछी निगाहों से अरुणिमा को देख रहा था, उसने आस्तिक को देखते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ भाई, मुझे लगता है कि अब अरुणिमा पहले से ज़्यादा बेहतर है। आस्तिक ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तो ठीक है, फिर एक पार्टी रखते हैं। आस्तिक के ये कहते ही सब चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि अरुणिमा भी चौंक जाती है। प्रणाली पूछती है, भाई पार्टी कैसे रख सकते हैं? आपने तो किसी को बताया ही नहीं कि आपने अरुणिमा से शादी कर ली है। अब अचानक से आप सबके सामने ये बात कहेंगे तो सबको बहुत बड़ा झटका लगेगा। आस्तिक मुस्कुराते हुए प्रणाली को देखता है और कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ। किसी को आस्तिक की बातें समझ में ही नहीं आ रही थीं। सब हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। आस्तिक ने आगे कहा, मैंने जो भी काम किया है सबसे हटकर ही किया है, तो शादी सिंपल तरीके से कैसे कर सकती थी? अब अचानक से सबको मेरी शादी का पता चलेगा और सब मेरी पत्नी से मिलेंगे। सोचो, सबके चेहरे देखने लायक होंगे। कीर्ति ने हैरानी से आस्तिक को देखते हुए कहा, भाई मुझे लगता है आपको पार्टी में एम्बुलेंस भी बुलाना चाहिए। कीर्ति की बात पर सब उसे हैरान नजरों से देखने लगे। आस्तिक ने भी हैरानी से पूछा, एम्बुलेंस? एम्बुलेंस का पार्टी में क्या काम है? कीर्ति ने जल्दी से कहा, एम्बुलेंस तो चाहिएगी भाई, क्योंकि आसपास के राज्यों की 8 राजकुमारियां आपसे शादी करने के लिए एक पैर पर खड़ी हैं और जब उन्हें अचानक से आपकी शादी का पता चलेगा तो बिचारियों का दिल नहीं टूट जाएगा, और मुझे तो लगता है कुछ को अस्पताल भी पहुंचाना पड़ेगा। कीर्ति के ऐसा कहते ही सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। बस अरुणिमा भावहीन तरीके से आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक कहता है, नहीं, ऐसी नौबत नहीं आई थी। तुम लोग पार्टी की तैयारी करो, और हाँ, पार्टी रायचंद के लेवल की होनी चाहिए। प्रणाली कहती है, जी भाई, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारी तैयारी कर लूंगी। आस्तिक नैपकिन से अपने हाथ साफ करते हुए कहता है, और हाँ, मेरे ससुराल वालों को भी इनविटेशन भेजना, आखिर उनकी बेटी की रिसेप्शन पार्टी है, उनका होना तो बहुत ज़रूरी है। ये बात सुनकर अरुणिमा का चेहरा खिल जाता है, लेकिन प्रणाली के चेहरे पर सिकन आ जाती है। वो हैरानी से आस्तिक को देखते हुए कहती है, भाई आप सच में उन भिकमगों को यहाँ बुलाना चाहते हैं? प्रणाली के ये कहते ही अरुणिमा का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन आस्तिक ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। पर पृथ्वी को उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने गुस्से में कहा, दी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ये मत भूलिए कि उनकी बेटी इस घर में आई है, तो इस नाते से वो हमारे रिश्तेदार हैं। प्रणाली अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, रिश्तेदारी बराबरी वालों में होती है, वो तो उन लोगों को मेरे भाई का एहसानमंद होना चाहिए,
न दान न दहेज न शकल न सूरत, बैठे बिठाए मेरे भाई जैसा दामाद मिल गया उनको और उनकी बेटी रातों रात एक रियासत की रानी बन गई। तभी वहां पर अरुणिमा की गुस्से भरी आवाज आती है जो प्रणाली से कहती है, प्रणाली दी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो मुंह में आया वो बोलती रहेंगी। प्रणाली की आवाज पर तो आस्तिक ने भी तिरछी निगाहों से प्रणाली को देखा था, लेकिन वो इस समय शांत था। प्रणाली की आंखें छोटी हो गई और अरुणिमा ने प्रणाली को देखते हुए कहा, किस बात का एहसान जता रही हैं आप? आप लोग आए थे मेरे घर रिश्ता लेकर, मैंने कोई रियासत नहीं मांगी है आपसे, ना तो मुझे आपके घर का ऐशो आराम चाहिए और ना ही ये शानो शौकत, लेकिन मैं किसी को भी ये हक नहीं देती हूँ कि कोई मेरे परिवार के खिलाफ एक गलत शब्द कहे। मैं आपके घर की बहू हूँ, आप चाहें तो मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता है मेरी माँ को कुछ कहने का। आप खुद एक लड़की हैं और कल को आपको भी शादी करके दूसरे घर जाना है। भगवान ना करे कहीं आपको गलती से गलत घर मिल गया ना, तो सारी जिंदगी अपने ही कहे शब्दों पर पछताएंगी आप। आस्तिक ने अरुणिमा और प्रणाली की बातों में हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि उसे पता था कि एक तरह से प्रणाली गलत है और उसे जवाब मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये जवाब आस्तिक देता तो प्रणाली इसे अपनी बेइज्जती समझती। इसीलिए जब अरुणिमा ने प्रणाली से कहा तो आस्तिक ने कुछ नहीं कहा।